अन्य दोष जो इस दृष्टि से रामचंद्रिका पर लगाया गया है वह यह है कि केशव में कथानक के गंभीर और मार्मिक स्थलों को पहचानने की शक्ति नहीं है। यहाँ पर केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि सबकी रुचि एक ही समान नहीं होती और इसी कारण मार्मिकता की भी कोई विशेष कसौटी नहीं हो सकती। जो स्थल एक व्यक्ति को अधिक मार्मिक प्रतीत होते हैं, दूसरे को भी उतने ही मार्मिक नहीं प्रतीत हो सकते। और दूसरी बात यह भी है कि रामकथा के जो मार्मिक स्थल इन आलोचकों द्वारा बतलाए गए हैं, उनका वाल्मीकि और तुलसी ने पहले ही पूर्ण रूप से चित्रण कर दिया था, और शायद केशव पृष्ठपेषण करना उचित नहीं समझते थे, इसलिए भी उन्होंने उन स्थलों को उतना अधिक विस्तार देना उचित नहीं समझा। अन्य बात यह भी हो सकती है कि रामकथा के ये स्थल प्रायः करुणा और शोक से भरे हुए हैं, और संस्कृत के आचार्यों ने महाकाव्य में करुण रस की प्रधानता का विधान नहीं किया है, अतः केशव ने इस कारण से भी इन स्थलों को चलता हुआ कर दिया हो। अस्तु, किसी कवि की आलोचना करते समय हमारे लिए उचित तो यह है कि जो कुछ उसने लिखा है उसी की विशेषताओं का विवेचन करें और उसी के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित करें। यदि हम कुछ सहृदयता से काम लेंगे तो रामचंद्रिका में मार्मिक और गंभीर स्थलों की कमी भी नहीं दिखलाई देगी। यदि हम केवल राम अश्वमेध प्रकरण को ही लें और उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करें तो भावुकता, सरसता और कौतूहल का पूर्ण प्रवाह वहां दिखलाई पड़ेगा। स्वाभाविक वस्तु वर्णन, स्वाभाविक चित्रण और युद्ध वर्णन सब अपने उत्कृष्ट रूप में दिखलाई पड़ेंगे। रामचंद्रिका में सीता स्वयंवर, परशुराम संवाद, हनुमान लंका गमन, राम रावण युद्ध प्रकरण इत्यादि अन्य अत्यंत उत्कृष्ट स्थल हैं जो केशव की अनुभूति और प्रतिभा के पूर्ण परिचायक हैं। तीसरा दोष जो महाकाव्यत्व की दृष्टि से रामचंद्रिका पर लगाया गया है वह यह है कि इसमें दृश्यों की स्थानगत विशेषताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है और केशव ने प्राकृतिक दृश्यों के लिए कोई आकर्षण नहीं दिखलाया है। इस कथन के पूर्वार्ध के समर्थन में कहा गया है कि केशव बिहारी प्रांत में स्थित विश्वामित्र के तपोवन का वर्णन करते हुए कह चलते हैं कि एला ललित लवंग संग पुंगी फल सो है, और उन्हें यह पता भी नहीं कि बिहार में यह चीजें होती है या नहीं। इसके उत्तर में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आलोचक महोदय ने विश्वामित्र के तपोवन का पूरा वर्णन ध्यान से नहीं पढ़ा। केशव इस बात से भली भांति परिचित है कि बिहार में ये चीजें नहीं होती, किंतु वे विश्वामित्र जैसे महर्षि के अलौकिक प्रभाव से भी परिचित नहीं है, और वे इसी प्रभाव की व्यंजना कराने के लिए उन वस्तुओं को भी उनके तपोवन में लाकर रख देते हैं जो सामान्यतः बिहार में अत्यंत दुर्लभ ही नहीं अलभ्य भी है। केशव स्वयं इस वर्णन के अंत में कहते हैं, अति प्रफुल्लित फलित सदा रहे केशव दास विचित्र वन। केशवदास जी स्वयं इस वन को विचित्र तथा अलौकिक समझते हैं, अतः उनकी समझ में उसकी सभी बातें विचित्र हैं, अतः उसके अनुसार इस वन में एला लवंग इत्यादि का होना भी असंगत नहीं है। उपर्युक्त कथन में उत्तरार्ध के समर्थन में कहा गया है कि देखे मुख भावे अनदेखई कमल नंद कहकर केशव ने अपनी मनोवृत्ति का स्पष्ट परिचय दे दिया है कि प्रकृति में उनके लिए कोई आकर्षण नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी भी कथन को अपने प्रकरण से हटाकर जिस तरह चाहे तोड़ा मड़ोड़ा जा सकता है। यही दशा केशव के उपर्युक्त कथन की भी हुई है। अपने वास्तविक स्थान पर यह केवल अर्थवाद के रूप में है, सिद्धांतवाद के रूप में नहीं। ग्रामीण स्त्रियां जानकी के मुख को देखकर उसकी अलौकिकता सिद्ध करने के लिए युक्तियां दे रही हैं। उन्हीं युक्तियों में से ऊपर का कथन भी एक है। जब कोई व्यक्ति अपने कथन की पुष्टि में प्रमाण देने लगता है तो जो उसके कारण उसके कथन में परिमिति की भावना नहीं रह जाती और वह सत्य को भी मिथ्या का रूप देने का प्रयत्न करता है, ऐसे समय में उसके कथन अर्थवाद के रूप में ही लिए जाते हैं, सिद्धांतवाद के रूप में नहीं। यही बात यहाँ भी है। अतः इस कथन को लेकर यह कहना कि केशव ने कमल की सुंदरता को सर्वथा अस्वीकृत कर दिया है उचित नहीं। जिस केशव ने सौंदर्य वर्णन करते समय अन्यत्र सैकड़ों स्थानों पर चंद्रमा और कमल को सौंदर्य का उपमान माना है और इस प्रकार उनके सौंदर्य को स्पष्टता स्वीकार कर लिया है, उस केशव के लिए कहना कि उसके हृदय में कमल के लिए कोई आकर्षण नहीं है अर्थ का अनर्थ करना है। रामचंद्रिका में सुंदर प्राकृतिक वर्णनों की भी कमी नहीं है और इस दृष्टि से यदि हिंदी के प्राचीन कवियों में से किसी से केशव की तुलना न की जाए तो उनका स्थान नीचा नहीं ठहर सकता। इसी प्रकार की कुछ और भी त्रुटियां बतलाई गई हैं, किंतु जब उन्हें हम परीक्षण की कसौटी पर कसते हैं तो वे सभी निरर्गल प्रतीत होती हैं। इन उपर्युक्त आक्षेपों के संबंध में इतना और भी कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि इनका संबंध महाकाव्य के बाह्य रूप के साथ है और इनके रहते हुए भी यदि उसकी आत्मा, जिसका संबंध कवि की प्रतिभा, अनुभूति और काल निपुणता से है, सुरक्षित है तो उसके महाकाव्यत्व में कोई विशेष त्रुटि नहीं आ सकती। रामचंद्रिका में केशव की प्रतिभा, अनुभूति और कला निपुणता इतनी प्रबल दिखाई देती है कि उनके सामने ये आक्षेप कोई महत्व नहीं रखते। अतः अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रामचंद्रिका केशव की एक सफल उच्च कोटि की कलापूर्ण कृति है। समाप्त।